اللهم صل على محمد وآل محمد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. تفصیلات موت کے سلسلے میں درس نمبر 24. موت کی تفصیلات بیان کرتے کرتے بات یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ قیامت سے پہلے جو ایک عظیم الشان واقعہ رونما ہوگا اس کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کر دی جائیں. نسبتاً کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں عرض کی جا رہی تھیں. اس تمام واقعے کو تفصیل سے بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ بہرحال جس قدر ہم اس عظیم شخصیت کے مشتاق ہیں کہ ہماری نگاہیں ان کے دیدار سے ٹھنڈی ہوں, صرف ہم ہی نہیں آئمہ معصومین علیہم السلام بھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بھی. بہار الانوار کی 51 جلد میں مولا نے ایک سرد آہ کھینچی, روایت میں, آہ میں ان سے ملاقات کا کس قدر اشتیاق رکھتا ہوں. مولا کائنات ابو الائمہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کے کس قدر شوقین تھے, اور ایک دفعہ تو اپنے دل کی طرف اشارہ کر کے مولا کائنات نے کہا تھا, اپنے دل کی طرف اشارہ کیا اور ایک آہ بھری کہ میں ان کو دیکھنے کا کس قدر مشتاق ہوں. اور کیوں نہ ہو, حقیقت یہ ہے کہ امام زمانہ اتنی عظمت رکھنے والی شخصیت ہے کہ باقاعدہ جیسا کہ آیت اللہ مستنبط نے اپنی کتاب القطرہ کے اندر لکھا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کو آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی قدر و منزلت کے حامل ہیں حضرت خضر, کہ حضرت موسیٰ جیسے نبی کی استادی کا شرف ان کو حاصل ہو رہا ہے, لیکن اتنی عظمت رکھنے کے بعد کہ موسیٰ جیسے نبی ان کی شاگردی میں جا رہے ہیں, ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرت خضر حضرت حجت کے تابع اور ان کی رعیت میں سے. اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت حجت کی عظمت کس قدر زیادہ ہے. صرف یہی نہیں کہ حضرت حجت کی عظمت, بلکہ ان سے جو منسوب چیزیں ہیں ان کی عظمت کس قدر زیادہ ہے. امام سے منسوب جو مسجد جمکران ہے, مسجد جمکران باقاعدہ جنت الماوا کی روایت ہے کہ من صلاح, امام زمانہ نے مسجد جمکران کی باؤنڈریز کھینچی تھی نا, اور انہوں نے اس مسجد کو بنایا تھا. من صلاح فکانما صلی فی البیت العتیق, مسجد جمکران میں نماز پڑھنے کا سبب وہی ہے جو خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھنے کا ہے. تو صرف یہی نہیں کہ امام زمانہ سے منسوب شخصیات بلکہ چیزیں صرف نہ صرف امام زمانہ کی اپنی ذات ہی نہیں بلکہ ان سے منسوب جتنی چیزیں ہیں ان سب کی بھی عظمت بہت زیادہ. اس کو بند کر دیا. اسی طریقے سے مثلا مسجد سہلا ہے, چھٹے امام کی جو روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی, کہ جو شخص بھی 2 رکعت نماز مسجد سہلا میں پڑھ لے گا خدا اس کی عمر میں 2 سال کا اضافہ کر دے گا. 2 رکعت نماز پڑھنا مسجد سہلا میں 2 سال کا عمر میں اضافہ کر دیتا ہے. और ये एक ऐसे इमाम का हम जिक्र कर रहे हैं जिसके लिए बाकायदा जुमला है ज़ियारतों में, अस्सलामु अलैका या कुतुबिल आलम, यानी जिस पर कायनात का पूरा दारो मदार है वो शख्सियत, उस पर हमारा सलाम। अस्सलामु अलैका या इमामुल मसीह, हज़रत ईसा के इमाम, आप पर हमारा सलाम। जो नबी खुदा हैं उनके भी इमामत, उनके भी इमाम, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की ज़ाते गिरामी अल्लाह। तो अब हम सब अशख़ास की ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी है कि हमेशा और मुस्तक़िल उनको याद रखें। बाकायदा अलग से ज़िम्मेदारियों में एक चीज़ है कि इमाम ज़माना को मुस्तक़िल याद रखा जाए। कुछ पाकीज़ा नफूस ऐसे हैं कि जिन्होंने बाकायदा इमाम ज़माना को अपने ख्वाब में देखा था, जिसमें इमाम ज़माना ने ख़ुद फरमाया था कि तमाम मोमिनीन आज़ादारी सैयदुश्शुहदा की मजालिस में मसाइब सुनने के बाद मेरे लिए दुआ ज़रूर किया करें। बाकायदा हज़रत हुज्जत का जुमला है कि तमाम मोमिनीन मसाइब सैयदुश्शुहदा को सुनने के बाद मेरे लिए ज़रूर दुआ करें और मैं भी उनके लिए दुआ करूँगा। मकियालुल मकारिम में आयतुल्ला सैयद मोहम्मद तकी इस्फहानी, उन्होंने बाकायदा ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी करार दिया है कि मुस्तकिल ऐसी मजालिस और महाफिल का इनेकाद आप लोग कीजिए कि जिसमें इमाम ज़माना का तस्करा हो और उनको याद किया जाए। ये मुस्तकिल ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी। हज़रत हुज्जत ख़ुद इन तमाम हालात से जो इस वक्त मोमिनीन के साथ, जब से हज़रत हुज्जत गायब हैं तब से लेकर आज तक पेश आ रहे हैं, मुस्तकिल सख्त गमगीन और महज़ून हैं। शेख मोहम्मद जाफ़र जवादी एक आलिम गुजरे, उन्होंने जब इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम को ख्वाब में देखा था तो बाकायदा इमाम से सवाल किया था कि मौला आपकी इस कैफियत के मुतालिक, उन्होंने जब सवाल किया तो इमाम ने एक जुमला दो दफ़ा फरमाया, मेरा दिल खून खून है, मेरा दिल खून खून है। यानी इन तमाम हालात से ख़ुद इमाम ज़माना शदीद गमगीन और महज़ून है। आका सैयद मोहम्मद इस्माइल शरफ़ एक और आलिम गुज़रे हैं, फरमाते हैं कि जब मैं आताबात आलिया की ज़ियारत से मुशर्रफ़ हुआ और हरम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम में पहुँचा, दुरूद भेज दीजिए मोहम्मद वाले, तो मैंने देखा कि खुर्शीद जहां अपने जमाल की पूरी ताबिश के साथ ज़ाहिर हो गए, यानी इमाम ज़माना को उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा। आका सैयद मोहम्मद इस्माइल शरफ़ीन कह रहे हैं, मैं वालेहाना लपक के इमाम के पास गया और पूछा कि आप कौन हैं, हालांकि दिल को यकीन हो चुका था कि इमाम ज़माना। तो उस वक्त इमाम ज़माना ने एक जुमला कहा, मैं इस कायनात का सबसे मज़लूम तरीन फ़र्द हूँ। वाकई अगर आप उस लिहाज से देखें कि कब से इमाम की ज़ात इतनी सब मसाइब को देखती आ रही है और शियत के ऊपर, अपने मानने वालों के ऊपर और अपनी औलादों के ऊपर कैसे मजालिम उन्होंने देखे हैं, तो अब हमारी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी ये है कि हम उस इमाम की मारिफत को तो ज़रूर हासिल करें। उनकी मारिफत हासिल करना ये कोई बहुत उनका चीज़ और एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जिसको हासिल नहीं किया जा सके, या फ़कत चंद ही दुनिया के अंदर अफराद ऐसे होंगे जो इमाम ज़माना की मारिफत को हासिल कर सकते हैं, नहीं, हर शख्स हासिल कर सकता है। खुद अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जो शख्स भी जिस चीज़ की जस्तजू करता है उसको मुकम्मल तौर पर पा लेता है या उसका कुछ ना कुछ हिस्सा तो पा ही लेता है। तो मारिफत इमाम की जस्तजू करना, मुकम्मल हासिल ना भी हो सकी तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो उसका ज़रूर हासिल हो जाएगा। अच्छा, इसके लिए चंद आमाल हैं। امام زمانہ کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے. امام کے دوسرے نائب خاص محمد ابن عثمان، ایک تو طریقہ انہوں نے بتایا ہے توجہ الیہ بالزیارہ، یعنی جو شخص بھی آپ کی زیارت جتنی دفعہ پڑھے گا. دیکھیں زیارت کیا ہے، امام زمانہ کے اوپر سلام، جتنی دفعہ وہ زیارت کرے گا اور امام کو سلام کرے گا اتنی ہی دفعہ جواب سلام کے لیے حضرت حجت اس کی طرف متوجہ ہوں گے. یہ جو روز آپ کو زیارت پڑھنے کا حکم ہے نا، اس کا ایک فلسفہ یہ بھی ہے کہ جتنی دفعہ آپ امام کا ذکر کریں گی، جتنی دفعہ ان کو سلام کریں گی، آپ کی طرف وہ اتنا ہی زیادہ متوجہ ہوں گے، اور جتنے زیادہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہوں گے اتنے ہی آپ کے قلب اور باطن کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی چلی جائے گی اور اتنی ہی زیادہ معرفت آپ کے اندر آتی چلی جائے گی. یہ ہے اس کا ایک فلسفہ کہ امام کی زیارت کو جو ہم اس طرح بے دلی کے ساتھ اور روا روی کے اندر پڑھ دیتے ہیں اور صرف الفاظ کی حد تک رہ جاتے ہیں، لیکن بہرحال ہمیں اس کے باوجود بھی ایک خاص انداز سے زیادہ ہم آگے بگڑنے بھی نہیں پاتے. لیکن اگر ہم واقعی دل سے اور معنی اور مفاہیم سے واقفیت رکھتے ہوئے ان زیارات کو پڑھیں تو یقیناً امام کی بار بار توجہ کی وجہ سے جب آپ زیارات پڑھیں گی تو اتنا ہی قلب اور باطن کے اندر صفائی پیدا ہوتی چلی جائے گی. اچھا، چند عبادات کے متعلق علماء نے کہا کہ اگر وہ انجام دی جائیں تو وہ حضرت حجت کی توجہ بہت زیادہ آپ کی طرف جذب ہوتی چلی جائے گی اور آپ کے اندر ایک غیر محسوس انداز میں ایک تبدیلی آتی چلی جائے گی. تین عبادات تو بالکل واضح ہیں جن کے متعلق امام نے فرمایا ہے. نافلہ شب، نماز شب کا پڑھنا، جو جتنا زیادہ نماز شب کا پابند ہوتا چلا جائے گا خود بخود امام زمانہ کی ذات گرامی اس کی طرف متوجہ ہوتی چلی جائے گی، اتنی ہی زیادہ ان کی توجہات آپ کی طرف جذب ہوں گی. دوسری چیز زیارت جامعہ. زیارت جامعہ ایک ایسی چیز ہے کہ یہ بھی امام زمانہ کی توجہ کو آپ کی جانب جذب کرے گی. اور تیسری چیز ہے عبادت زیارت عاشورہ. محدث نوری نے جو پورا واقعہ جو بہت مشہور ہے جسے میں ابھی پڑھنا نہیں چاہ رہا کیونکہ آپ لوگوں نے بہت دفعہ سنا ہوا بھی ہے، کتابوں میں بھی پڑھا ہوا ہے، سید رشتی کا جو واقعہ ہے اس کے اندر امام نے تین دفعہ ان تینوں عبادات کا خاص طور پر ذکر کیا تھا. نافلہ، یعنی تمہارے لیے لازم ہے کہ تم نماز شب پڑھو. جامعہ، تمہارے لیے ضروری ہے کہ زیارت جامعہ پڑھو. عاشورہ، تمہارے لیے لازمی ہے کہ تم زیارت عاشورہ پڑھا کرو. اور خود زیارت جامعہ کے متعلق تو امام زمانہ کا اپنا ہی ارشاد گرامی ہے کہ زیارت جامعہ ایک بہت ہی بہترین زیارت ہے، بہترین زیارت میں سے ایک. اس کے علاوہ ایک اور عمل ہے کہ جو کہ حضرت حجت کی توجہ کو آپ کی جانب جذب کرے گا، اس کا نام ہے زیارت امین اللہ. زیارت امین اللہ وہ زیارت ہے جسے امام زمانہ نے خود پڑھا ہے، تو اس کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاکید ہے. اور ایک اور بات خاص طور پر معرفت کے سلسلے میں کہ دیکھیے یہ بھی جملہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کا، اللہم صلی علی محمد. باقاعدہ شرح غرر الحکم میں روایت ہے امیر المومنین سے کہ بلند ترین مقامات پر فقط اپنی عادات پر قابو پا کر ہی پہنچا جا سکتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت ساری عادات، سستی اور کاہلی، اور خاص طور پر جو سب سے بری عادت جو ہم سب کے اندر موجود ہے چند ایک مستثنیات کو چھوڑ کر، وہ ہے غفلت. علماء نے کہا کہ ہر چیز کو بہت سرسری طور پر لینا، ہر عذاب ہم نے سن لیے تمام گناہوں کے، کوئی ہم پر اثر ہوتے دیکھنے میں نہیں آ رہا. جو کہ پچھلی دفعہ بھی روایت میں نے بیان کی آخری زمانے کی نشانیوں میں سے کہ امام نے فرمایا تھا کہ نشانیاں مسلسل پوری ہو رہی ہوں گی لیکن کوئی ان سے اثر لینے والا نہ ہوگا، کسی کا کے کان پر جو نہیں رہیں گے. اگر آپ خود بھی دیکھیں، مسلسل آج ہمارا چوتھا ہفتہ ہے اس متعلق بیان کرتے ہوئے، कितनी निशानियां आप सुन चुकी हैं, कितना दिल को यकीन आ चुका है कि इमाम ज़माना का ज़हूर किस कदर करीब है, सारी तकरीबन निशानियां पूरी होती जा रही हैं, और उसके बावजूद इन चार हफ्तों के अंदर कौन सी अमल में तब्दीली आई, ये आप अपने तौर पर देखिएगा। सबसे बड़ी जो बुरी आदत है हमारी वह है गफलत। और मौला ने फरमाया कि बुलंद मुकामात पर फकत और फकत अपनी आदत, बुरी आदत के ऊपर गलबा पाकर ही पहुंचा जा सकता। तो मारिफत उसी वक्त हासिल हो सकेगी कि जब हम अपनी इन बुरी आदत को, मसलन बहुत ज़्यादा सोने की आदत, बहुत ज़्यादा बातें करने की आदत, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सरसरी लेने की आदत, किसी चीज़ को कोई गोया अहमियत ही नहीं देनी, कितनी भी बातें सुनते चले जाएं, कितनी भी अहादीस कान के अंदर पढ़ती चली जाएं, तो लेकिन उसमें भी सबसे बुरी आदत जो है वो इस गफलत है। तो बहरहाल ये देखना पड़ेगा कि हम क्या हैं, हमारा हदफ और हमारा मकसद ज़िंदगी क्या है, ये आपको तय करना पड़ेगा। एक बहुत ही अहम तरीन चीज़ है, और अपने आप को हमेशा इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि आप आखिर ज़िंदगी आप में आपको करना क्या है, आपका हदफ ज़िंदगी क्या है। इस गफलत की ज़िंदगी से बाहर निकलना पड़ेगा। एक हदफ ज़िंदगी तय कीजिए और उसके लिए दिन और रात एक कर दीजिए, फिर आपको मारिफत का कोई दर्जा हासिल हो सकेगा। अच्छा, इसी तरीके से अभी जो बार बार इस बात का जिक्र हुआ कि जनाब दुआ कीजिए हज़रत हुज्जत के लिए, वो भी आपके लिए दुआ करेंगे, खुद उनकी फरमाइश है कि मेरे लिए दुआ किया करो। उसके बावजूद हम देखते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। कितने मोमिनीन दुआ कर रहे हैं लेकिन दुआ है कि कबूल होने में नहीं आती, जहूर के लिए के सिलसिले में भी, और हम जो आम जिंदगी में लोगों का एक तरीक़ेकार है उसमें भी लोग शिकायतें करते नज़र आते हैं कि हमारा अमल अंजाम दे रहे हैं लेकिन कोई दुआ हमारी कबूल नहीं होती। देखिए, हमारे उस्ताद ने एक दफ़ा एक रिवायत पढ़ी थी आज से तकरीबन 15 साल पहले, किताब कैफर किरदार के हवाले से। फरमा ये रहे थे कि देखिए, दो टांगों वाला जो आदमी होता है वो एक टांग वाले को देखकर खुदा का शुक्र अदा करता है, और एक टांग वाला जो होता है, ये भी रिवायत नहीं है तो खुद बयान कर रहे थे, वो जिसकी दोनों टांगें नहीं होती उनको देखकर खुदा का शुक्र अदा करता है। तो कायनात की जितनी भी मौजूदात हैं उन सब ने खुदा का एक शुक्र अदा किया, कुत्ते ने भी खुदा का शुक्र अदा किया, परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे कुत्ता बनाया। अब कुत्ते से अगर सवाल किया जाए कि तुम किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो, तुमसे ज़्यादा ना तो कोई नजीस है ना तुमसे ज़्यादा बदतर कोई जानवर है, तो कुत्ते ने कहा हाँ मैं खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि उसने मुझे कुत्ता बनाया है, सुअर नहीं बनाया। सुअर ने भी खुदा का शुक्र अदा किया, या परवरदिगार तेरा लाख लाख शुक्र है, जालानी खंजीरा, कि तूने मुझे खंजीर बनाया। भाई तुमको शुक्र अदा करने की क्या ज़रूरत है, तुम तो सबसे कुत्ते से भी ज़्यादा बदतर हो, नजीसुल ऐन हो, हर हर रतुबत तुम्हारी नजीस है, सारी फ़िक़ह की किताबें तुम्हारी एक लिहाज से मजम्मत में निजासत के जिक्र से भरी हुई हैं, तुम किस बात का शुक्र अदा कर रहे हो। तो खंजीर ने भी कहा मैं इस बात का शुक्र अदा कर रहा हूँ कि परवरदिगार ने मुझे खंजीर बनाया है, बेनमाजी नहीं बनाया। इससे आप अंदाज़ा लगाइए। तो अब वो रिवायत हमारे उस्ताद ने पेश की थी कि देखिए, कुछ गुरु ऐसे हैं कि जो जिस जगह पर मौजूद हों वहाँ दुआ कभी कबूल नहीं होती। उनमें एक रिवायत है कि जिस घर में कुत्ता मौजूद हो वहाँ रहमत के फरिश्ते नहीं आते, रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो दुआ की कबूलियत भी नहीं होती, जिस घर में कुत्ता हो। और जिस घर में कुत्ते से भी बदतर सुअर हो वहाँ पे भी रहमत के फरिश्ते नहीं आएंगे और दुआ कबूल नहीं होगी। और जिस घर में खंजीर से भी बदतर बेनमाजी मौजूद हो या गंडेदार नमाज पढ़ने वाले हों वहाँ पर भी, यानी इन तमाम आमाल जो अंजाम दिए जाते हैं, दुआ कुमैल पढ़ी जा रही है और ज़्यारतें पढ़ी जा रही हैं, रहमत के फरिश्ते खुदा की तरफ से आते हैं लेकिन हर तरफ से उस घर के दरवाजे अपने लिए बंद पाते हैं, वहाँ मंडलाते हैं आस पास और फिर वहाँ से वापस चले जाते हैं। परवरदिगार की रहमत आती है लेकिन कुछ वजूहत ऐसी हैं, कुछ गुरोह जिनमें से एक गुरोह बेनमाजियों का भी, कि जब कुत्ते की वजह से रहमत के फरिश्ते नहीं आते तो उससे भी बदतर खंजीर है और खंजीर से भी बदतर बेनमाजी। तो कोशिश करेंगे घर में ऐसे अफराद, दूसरे अल्फाज में माशरे के अंदर तब्दीली या इमाम उस वक्त आएंगे जब आप इतने अफराद तो पैदा कर लें कि जब इमाम एक इलाही हुकूमत के कयाम का ऐलान करें तो उन्हें हर हर मनसब के ऊपर फायज करने के लिए आदिल अफराद की ज़रूरत होगी। फासिक व फाजिर व बेदीन और जाहिल अफराद तो इन अहदों के ऊपर नहीं मुकर्रर किए जाएंगे ना। तो माशरे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा इल्म को फ़रोग देना है और माशरे से ज़्यादा गुनाहों को ख़त्म करना है, और उसमें अपने जो दुआएँ कबूल नहीं हुई उसके अंदर से एक वजह यह भी है कि आपने अब तक वो काम ही मुकम्मल नहीं किया जिसको एक लिहाज से ग्राउंड वर्क कहा जाता है, एक ग्रास रूट लेवल के ऊपर जो एक काम होता है और उससे बढ़कर भी जो आगे काम होते हैं कि जब इलाही हुकूमत का क़याम होगा तो ऐसे अफराद कहाँ होंगे, ऐसे इल्म रखने वाले, ऐसे इल्म तक़वा रखने वाले, गुनाहों से बचने वाले आदिल अफराद, ऐसे अफराद की तादाद में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफा करना। अच्छा, अब एक चीज़ और इसमें बता दी जाए, देखिए गैबत कुबरा के दौर में जिन अफराद ने हज़रत हुज्जत की ज़ियारत भी की इनकी तादाद भी हज़ारों में, यानी जो सही तरीक़े से जिनके मुतालिक ये बात मालूम हुई। अलबत्ता देखिए इसको, इनको इतना ज़्यादा फ़रोग़ दिया जाना, इसमें बहुत सारे क्योंकि देखिए कि जो मनफी सोच रखने वाले या हुब्बे जाओ शोहरत रखने वाले अफराद या फ्रॉड जो अफराद होते हैं वो भी इसके अंदर कूद पड़ते हैं। तो ये भी ज़रूरी था कि आपकी ज़ियारत मुख्तलिफ अदवार में लोग करते रहें ताकि आपका वजूद कोई तखय्युलाती या अफसानवी ना करार पा जाए कि भाई आज तक तो किसी से मिले नहीं, अगर होता तो कभी तो मुलाकात उनसे होती, तो इतनी मुलाकातें भी ज़रूरी थी, और ना इतनी ज़्यादा ये मुलाकातें कि फितने की शक्ल इख्तियार कर जाएं। इस वजह से इनकी मजम्मत भी आई कि जो इस बात को जाहिर करेगा कि मेरी इमाम से मुलाकात हुई और लोगों से कहता फिरे, शायद आयतुल्ला जवाद तबरेजी का जुमला, ये इस बात की दलील है कि उसकी मुलाकात इमाम से नहीं हुई। यानी जो ये कहता है कि मेरी मुलाकात हुई तो वो जिसकी मुलाकात होती है वो बताता नहीं है, या उसके इंतकाल के बाद पता चलता है कि इनकी मुलाकात हुई थी। तो बहरहाल इस लिहाज से ये एक सिलसिला एक ख़ास मसलियत से शुरू किया गया कि कुछ अफराद को मुख्तलिफ अदवार में ज़्यारतें भी करवाई जाएँ, और बाकायदा ईरान के अंदर तो इस मसले ने जब से मुलाकात इमाम ज़माना नाम की कुछ किताबें छपी तो तकरीबन ईरान में एक फितना सा नमूदार हो गया था। हर शख्स तकरीबन, क्योंकि हर तरह से लोग रहने वाले वहाँ पर भी हैं, इस बात का मुद्दई हो गया, किसी का कोई काम हो गया, किसी का मसलन गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया और उसका कोई आदमी आया उसका टायर दुरुस्त कर दिया तो उन्होंने कहा तो इमाम ज़माना मसलन तशरीफ लाए थे, तो एक बिल्कुल एक मजाक सा बन के रह गया। बाकायदा कुछ ऐसी किताबों को वहाँ पर जलाया गया, मुजाहरे हुए, कुछ किताबों के लिखने वालों को वहाँ पर अरेस्ट भी किया गया, और ताकि इस फितने के ऊपर किसी तौर पर काबू पाया जा सके, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह उसमें काबू पा लिया गया उस पर। तो यही चीज़ यहाँ पर भी आपको देखनी होगी, अगर इस तरह से कोई दावा करने लगे तो ये आपको अपनी ज़िम्मेदारी पता होनी चाहिए कि आप का उस वक्त इकदाम क्या होना चाहिए। इस पर हम एक दफ़ा जिक्र कर भी चुके हैं आपकी एक नशिस्त में जिसमें मुज्तहिदीन के आरा और फतावे सिलसिले में नकल किए गए थे। अच्छा, जितनी भी अलामतें जैसे कि हम इससे पहले बयान कर रहे थे कि जो पूरी हो चुकी, बहुत सारी तो ऐसी हैं जो मुसलसल पूरी होती हुई भी नज़र आ रही, कितनी तो आपने सुन ली। मसलन एक वो जो रिवायत है कि मुसलमानों का मुकाबला सुल्तान रोम से होगा, जैसे कि आपके इल्म में इस वक्त पूरा इस वक्त जो सुल्तान रोम यानी अमेरिका किस तरह से पूरे मुसलमानों के खिलाफ उसने एक फौजकशी का एक सिलसिला शुरू कर रखा है, तो मुसलमानों का मुकाबला सुल्तान रोम से होगा। ये भी रिवायात में कि हाकिम हिजाज हाकिम बगदाद को उकसाएगा कि वो मेरे बेटे के मुल्क पर हमला करें, जबकि मेरा बेटा उस वक्त हाकिम खुरासान होगा। मेरा बेटा एक ऐसे इनकलाब के बाद हुकूमत को हासिल करेगा जिसमें 80,000 से ज़ायद मोमिनीन अपनी जानों का नजराना पेश करें। देखिए कितनी रिवायात ऐसी। इसी तरीके से मेरा बेटा एक ऐसे जालिम को इख्तदार से हटाकर आगे आएगा कि जिसके सिलसिले में फ़कत दो ही बादशाह होंगे। हम देखते हैं कि इमाम खुमैनी जिस बादशाह को हटाकर जो पहलवी ख़ानदान था उससे पहले फ़कत दो ख़ानदानों के अंदर ईरान के अंदर हुकूमत रही, सफ़वी ख़ानदान और काचार ख़ानदान। कि मेरा बेटा एक ऐसे जालिम को हटाकर इख्तदार में आएगा कि जिसके सिलसिले में फकत दो बादशाह होंगे, यानी दो खानदानों में बादशाहत रहेगी। हाकिम हिजाज में सिलसिला बादशाहत भाइयों में चलेगा, जो कि हमको इस वक्त नज़र भी आ रहा। जब भी आखिरी ज़माने के लिए अपने ईमान को बचाने के लिए कितनी दुआओं की ताकीद आई है जो आप सुनती रहती, अपनी हिफाजत ईमान की दुआ करते रहना। पैगंबर इस्लाम खत्मी मर्तबत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपने सहाबा से, एक दफ़ा पैगंबर ने फरमाया, क्या तुमको पता है कि सबसे ज़्यादा काबिल ताज्जुब ईमान किस शख्स का है? कुछ सहाबा ने कहा, या रसूलल्लाह, मलाइका का ईमान। पैगंबर ने कहा, नहीं, वो तो बहरहाल अल्लाह की एक मासूम मखलूक हैं, उनके ईमान पर तो कोई ताज्जुब की बात नहीं। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, अम्बिया का ईमान। पैगंबर इस्लाम ने कहा, नहीं, अम्बिया भी खुदा की मासूम हस्तियां हैं और उनका ईमान कोई काबिल ताज्जुब ईमान नहीं। कहा कि अच्छा, या रसूलल्लाह, हमारा ईमान। कहा कि नहीं, तुम तो मेरे सामने मौजूद हो, तुम मुझे देख भी रहे हो, तुम्हारा ईमान भी काबिल ताज्जुब नहीं। कहा कि या रसूलल्लाह, फिर आप ही फरमाइए कि कौन से ऐसे अफराद हैं जिनका ईमान सबसे ज़्यादा काबिल ताज्जुब। कहा, आखिरी ज़माने में आने वाले उन मोमिनीन का जिन्होंने ना मुझे देखा होगा ना मेरी औलाद को, और मेरे आखिरी फर्जंद पर उनका एतिकाद इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि पहाड़ टल जाएंगे मगर उनका ईमान ख़त्म नहीं होगा, और वो सफ़ेदी पर स्याही को देखकर ईमान लाएंगे। जिसके मुतालिक उलमा ने कहा कि यानी इमाम को उन्होंने देखा नहीं होगा, लेकिन सफ़ेदी पर स्याही यानी कागज़ के ऊपर लिखी हुई हदीसों को पढ़कर किताबों के अंदर ईमान लाएंगे। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि बहरहाल पैगंबर इस्लाम ने आखिरी ज़माने में, हम ऐसे नहीं कि सिर्फ फ़कत हमारी मजम्मत ही होती रहे, ईमान के ऊपर जो साबित कदम रहेंगे और इमाम के ऊपर मजबूत अपने एतिकाद को रखेंगे, पैगंबर इस्लाम ने कहा कि इन लोगों का ईमान बहुत ज़्यादा काबिल ताज्जुब है, जिन्होंने कुछ भी तो नहीं देखा, ना इमामों को देखा, और इतने सदी से ज़ायद अरसा गुज़र गया और हम हज़ारों साल गुज़र गए, कई सदियां गुज़र गईं, लेकिन हमने तो किसी भी मासूम हस्ती को अपनी आंखों से नहीं देखा, उसके बावजूद साबित कदमी के साथ रसूल के आखिरी फर्जंद पर ईमान रखना, ये काबिल ताज्जुब बात है। एक दफ़ा पैगंबर इस्लाम ने यह भी जुमला इरशाद फरमाया कि ऐ मेरे परवरदिगार, मुझे अपने भाइयों से मुलहक कर दे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, क्या हम आपके भाई नहीं? कहा कि नहीं, तुम तो मेरे दोस्त हो, मेरे भाई तो आखिरी ज़माने के वो मोमिनीन हैं जिनका मर्तबा तुमसे भी ज़्यादा बुलंद है, जिनका मर्तबा तुमसे भी ज़्यादा बुलंद है। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, हमने आपके साथ जंगें लड़ी हैं, कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। कहा कि नहीं, उसके बावजूद जंग में लड़ना, साथ रहना तो आसान है, अलबत्ता आखिरी ज़माने में आग को हाथ पर खड़े रहना लेकर रहना आसान होगा, जबकि अपने ईमान को बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो पैगंबर ने बाकायदा कि मुझे मेरे भाइयों के साथ मुलहक कर दे, कि जो हमारी पूरी एक नस्ल चल रही है, इसके मुतालिक पैगंबर इस्लाम ने जुमला इरशाद फरमाया और कहा कि वो आखिरी ज़माने में आने वाले मोमिनीन जो साबित कदमी के साथ रहेंगे, ये उस ज़माने के सहाबा से भी ज़्यादा बुलंद मर्तबे के ऊपर फाइज हो जाएंगे। अच्छा, अब एक बीच में एक इस लिहाज से एक बात आ गई कि मज़ीद तफसील में इससे पहले ही जाएँ, कुछ एक आध छोटे छोटे सवाल थे आप लोगों के, जो बीच में बस इसको दो एक मिनट में फारिग करके फिर अपने मौजू पर। एक तो ये पूछा गया था कि जनाब, ये जो एंतीना वाली जो रिवायत आपने सुनाई थी, इसका हवाला क्या है? उसमें मैंने खैर हवाला भी बताया था उस वक्त, लेकिन बहरहाल जो किताब का नाम है, अत्तशरीफ़ बिल मनन अल मारूफ़ बिल मुलाहिम वल फितन, किताब का नाम है अत्तशरीफ़ बिल मनन अल मारूफ़ बिल मुलाहिम वल फितन, सैयद इब्ने ताऊस की लिखी हुई किताब है, उसके अंदर वो रिवायत मौजूद है। इसी तरीके से ये भी पूछा गया कि वो जो औताद व अब्दाल, नौजबा और अखियार और सालेहीन के मुतालिक जो रिवायत बयान हुई थी कि हर ज़माने में होते हैं और इमाम के साथ भी हैं, उसका रेफरेंस क्या है? तो उसमें भी शेख इब्राहिम आमिली कफ़मी, जिन्होंने अपनी किताब मिसबाह के अंदर इस रिवायत को नकल किया। अच्छा, इतना बता दूं कि देखिए, मिसबाह किताब वैसे बहुत सारी हैं, सिर्फ मिसबाह के नाम की जो किताब है वो शेख कफामी की किताब है, और इसके अलावा मिसबाहु ज़ाहिर के नाम से एक और किताब है, सैयद इब्ने ताउस की किताब मिसबाहु ज़ाहिर। अच्छा, इसी के अलावा शेख तूसी की एक और किताब भी मिसबाहुल मुतहज्जिद जिसका नाम है। तो बहरहाल इस नाम से मुख्तलिफ किताब है, लेकिन फ़कत जो मिसबाह किताब है वो शेख कफामी की, जिसके अंदर ये वाली रिवायत है। फिर वो एक सवाल था कि उसका हवाला भी बता दीजिए। ऐनामा तकूनु यातबिकुम अल्लाहु जमीअ फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में सबकत करो, तुम इधर उधर भी दुनिया में कहीं भी मौजूद होंगे तो खुदा एक जगह पर जमा कर देगा। वो भी सूरह बकरा की आयत नंबर 148। ये एक दो चीज़ें आप लोगों की रह गई थी, तो मैंने सोचा कि इसको बीच ही में इसमें जवाब दे दिया जाए, कभी आखिर में चीज़ फिर रह जाए। अच्छा, अब एक सवाल ये भी था, खैर अभी उसकी तफसील आगे चलकर आएगी। एक हर दफ़ा जब भी इमाम ज़माना के मुतालिक गुफ्तगू होती, एक चीज़ ज़रूर बिज़रूर हर जगह पूछी जाती, उलमा से कहीं कोई भी इस मौजू पर ख़िताब करे कि इमाम ज़माना जब आएंगे तो क्या तलवार से जंग होगी या उस ज़माने में जो सुपर लेटेस्ट कस्म के हथियार होंगे। तो बहरहाल इसमें खैर मुख्तलिफ चीज़ें हैं, अब इसकी तो बहस में हमें नहीं जाना, लेकिन रुझान उलमा सबका यही है कि नहीं, उस ज़माने में जो सुपर लेटेस्ट तरीके जो भी इख्तियार उस ज़माने में होंगे उससे भी बढ़कर बल्कि इमाम इख्तियार करेंगे, कि उस ज़माने का इंसान इतना ज़्यादा तरक्की याफ्ता हो चुकेगा कि वो अपने से बेहतरीन कोई टेक्नोलॉजी कोई देखेगा तो ही मरूब होगा और ईमान को कबूल करेगा। यानी उसको उसी वक्त यकीन आएगा जब वो अपने से बेहतर किसी चीज़ के अंदर वो देखेगा कि नहीं, ये तो इनके पास तो हमारे से भी बेहतर एक चीज़ है। बल्कि उलमा का कहना है कि पहले ज़मानों की निस्बत आजकल के दौर में तो ज़हूर इमाम ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है, कि वाकई आज के दौर में अगर ज़हूर इमाम हो जाए। बाकायदा हमारे उस्तादी से एक दफ़ा हम सब लोग बैठे पूछ रहे थे, तो उन्होंने ये जुमला कहा था कि आजकल के दौर में ज़्यादा ज़हूर आसान है, पहले ज़माने में तो जनाब ये था तलवार का दौर था और मौजज़ात तो अगर दिखाते तो इमाम एक अलग बात होती, लेकिन आज हम देखते हैं कि पूरा का पूरा कंप्यूटराइज दौर है। अगर बिलफर्ज आज कंप्यूटर कोई वायरस ऐसा आ जाए जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर वायरस एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और सब सारे के सारे जैम हो जाएं, तो सारा यानी इस वक्त पूरा सिस्टम जितना भी है इलेक्ट्रिसिटी का और मवासलात का और सब चीज़ों का, वो पूरे का पूरा इन तमाम जो बड़ी ताकतें हैं इनका पूरा सिस्टम इसके ऊपर चल रहा है। आज ये कोई भी, आज हम देखते हैं कि नासा की वेबसाइट्स के अंदर अक्सर जो बच्चे हैं वो तक कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बना के वहाँ पर घुस गए, और कितनी इस पर फिल्में भी बनाई गई कि मिसाइल तक फायर होने वाले थे और उन्होंने कंप्यूटर के प्रोग्राम के ज़रिए वहाँ तक अप्रोच कर लिया। तो आज तो एक मामूली सा एक सॉफ्टवेयर और प्रोग्राम को जो कोई इतना कोई ज़हीन शख्स हो और वो अगर उसको बना ले और उसको लॉन्च कर दे तो ये सारी ताकतें जो हैं वो बिल्कुल बेकार होकर रह जाएंगी। तो आजकल के दौर में तो ये चीज़ ज़्यादा समझ में आ रही है। तो इमाम इन्हीं तरीक़ाकार को अख्तियार करके इन बड़ी ताकतों को काबू भी करेंगे, और तफसील अपने मुकाम पर आएगी, लेकिन आज इतना वक्त नहीं, क्योंकि आज हमें हर सूरत में अपने इस मौजू को मुकम्मल कर लेना है। अच्छा, अब इमाम जब तशरीफ़ ले आएंगे और जितनी तफसीलात हमने बयान की, तो उसके बाद ये है कि इमाम कुछ ऐसी इस्लाहात करेंगे, एक रिफॉर्म्स होंगी पूरी दुनिया के अंदर, ख़ास तौर पर इसका आगाज़ करेंगे मक्के से। एक तो मस्जिदुल हराम की जो हज़रत इब्राहिम के दौर में जो हुदूद मुकर्रर की गई थी, जिसकी पूरी तफसीलात हैं कि हज़रत इब्राहिम के दौर में हज़रत इब्राहिम ने क्या हरम की हुदूद मुकर्रर की थी, वो मल्ला या हज़रुल फ़कीह में शेख सदूक ने लिखी, हम वो तो अभी बयान नहीं कर रहे, लेकिन बहरहाल ये कि मुकाम तवाफ़ वो बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वसी हो जाएगा मुकाम तवाफ़, क्योंकि इस हद तक जब हज़रत हुज्जत का ज़हूर हो जाएगा तो पूरी दुनिया से इतनी बड़ी तादाद के अंदर लोग हज उमरा और ज़ियारात के लिए पहुंचा करेंगे कि बेपनाह रश का इजाफा हो जाएगा वहाँ पर। अच्छा, मुकाम इब्राहिम को अपनी असली जगह पर, जो कि जब ज़माने रसूल खुदा में था, उस जगह पर मुकाम इब्राहिम को ला के रखा जाएगा। आप में से किसी ने देखा होगा तस्वीर के अंदर सुनहरी रंग का एक शोकेस है जो खाने काबा के दरवाजे के कुछ सामने मौजूद है, जो ज़रा फासले पर है, जिसके दरमियान से तवाफ़ किया जाता है, मुकाम इब्राहिम के दरमियान से और खाने काबा की दीवार से। उसको अपने असल मुकाम से, जो कि ज़माने रसूल खुदा में था, جو کہ ایک پورے تفصیل ہے اس کی، جب انشاءاللہ آپ لوگوں کی حج کلاسز ہوں گی جو پچھلی بھی ہوئی تھی ان کے بھی سامنے بھی میں نے وہ چیز پیش کی تھی کہ باقاعدہ کس طرح سے ایک سیلاب آیا تھا اور مقام ابراہیم اپنی جگہ سے ہٹ گیا تھا، اور اس کے بعد پھر حضرت عمر کے زمانے میں دوبارہ سے اس کی نپائی وغیرہ ہوئی تھی اور پھر اس کو اس جگہ پر لا کے رکھا گیا جہاں آج ہے. خیر اس کی ایک الگ تفصیل ہے کہ پھر آئمہ کے جو اپنا دور آیا مولائے کائنات کو، انہوں نے اپنے واپس اس جگہ پہ کیوں نہیں رکھا، تو اس کی تفصیل بھی اپنی جگہ پہ ہے، جب انشاءاللہ ہوگا تو ہم اس میں بیان کریں گے. تو بہرحال زمانے رسول خدا میں وہ مقام ابراہیم خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا. جب بھی کہا جاتا ہے رکن اور مقام کے درمیان امام ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے. رکن تو حجر اسود کو کہا جاتا ہے، وہ کونا کہ جہاں پہ حجر اسود لگا ہوا ہے، اور مقام مقام ابراہیم، تو مقام ابراہیم کی اصل جگہ تو وہیں جو خانہ کعبہ کی دیوار سے ملا ہوا تھا، ورنہ امام کیسے پیٹ لگا کے بیٹھیں گے، ورنہ تو مقام ابراہیم کافی دور ہے. تو بہرحال اس زمانے میں امام ایک تو مسجد الحرام کی وہ پرانی سابقہ حدود پہ اس کو لے کر جائیں گے، اور اس کے علاوہ مقام ابراہیم کو اپنی اصل جگہ پر خانہ کعبہ کے ساتھ ملا کر رکھیں گے. رش اتنا زیادہ ہو جائے گا طواف کرنے والوں کا کہ امام زمانہ کی طرف سے حکم آ جائے گا کہ مستحب طواف کرنے والوں پر پابندی. فقط اور فقط حج کے ایام میں خاص طور پر یہ بات ہوگی جب اتنا زیادہ رش ہوگا، کہ ظاہر ہے کہ جو واجب طواف کرنے والے ہیں کہیں اس سے رہ نہ جائیں، تو مستحب طواف کرنے کے اوپر پابندی لگا دی جائے گی. اسی طریقے سے جتنی بھی تفاسیر ہیں اس میں سے تفاسیر بالراہ یہ نکال دی جائیں گی، ان کو نکال کے پھینکا جائے گا تمام تفاسیر میں سے. تفسیر بالراہ جتنی کی گئیں، تقریباً علماء نے کہا کہ رجال کی جتنی بھی کتب ہیں اس سے انسان بے نیاز ہو جائے گا، تمام قیاسی مسائل دفن ہو جائیں گے، فلسفے کے جتنی بھی فضول مباحث ہیں وہ سب ختم ہو کے رہ جائیں گے، اور تہذیب و ثقافت کے نام پر جو ایک مادر پدر آزادی کا جو تصور ہے یہ بھی امام زمانہ کی آمد کے بعد بالکل ختم ہو جائے گا. جتنے مسالک ہیں مسلک یہ سارے ختم ہو جائیں گے، اور سب کے سب لوگ مومن کہلائیں گے. اچھا اس زمانے میں جو ایک پوری تفصیل ہے کہ ہوگا کیا امام کے دور میں، جو جو افراد بے گھر ہوں گے ان کے متعلق یہ ہے کہ باقاعدہ امام کی طرف سے ایک اجازت عام ہوگی، جس کو جہاں جگہ ملے وہ قوانین کا احترام کرتے ہوئے اس جگہ پہ اپنے مکان کو بنا لے، اور جو مکان بنانے کی طاقت نہیں رکھتا ہوگا اس کے متعلق پھر یہ ہے کہ امام کی جو حکومت اسلامی ہوگی عالمی حکومت، وہ خود ایسے افراد کو مکان بنا کر مہیا کرے گی. اس زمانے کے متعلق یہ ملتا ہے کہ قیمتیں جو ہیں مکانات کی، خاص طور پہ وہ افراد کے جنہوں نے انویسٹمنٹ کے کرنے کے لحاظ سے مکانات کو خرید رکھا ہے، تو اس زمانے میں قیمتیں مکانات کی بہت زیادہ کم ہو جائیں گی، سوائے کوفے کے مکانات کی، کہ اس کی دارالحکومت ہونے کے لحاظ سے ایک الگ حیثیت ہوگی تو اس کی تو قیمت زیادہ ہوگی، لیکن جو اور جگہوں کے اوپر مکانات ہیں تو کیونکہ قیمتیں اسی وجہ سے بڑھتی چلی جاتی، تو جب ہر شخص کو حکومت کی طرف سے گھر ملے گا عالمی حکومت کی طرف سے اسلامی حکومت کی طرف سے، تو پھر خود بخود ان مکانات کی قیمتیں کم ہوتی چلی جائیں گی، لوگوں کے دلوں سے کینہ نکل جائے گا امام کی حکومت کے آنے کے بعد، اور ہر طرف فقط اور فقط خیر ہی خیر ہوگا. یہ بھی تفصیل ہے روایات میں کہ سڑکوں اور گلیوں میں جتنی بھی کھڑکیاں کھلتی ہیں گھروں کی ان کو بھی بند کر دیا جائے گا. سڑکوں اور گلیوں کی طرف جو کھڑکیاں کھلتی ہیں ان کو بند کر دیا جائے گا، اور جتنے بھی روڈز ہیں یہ تقریباً ہر روڈ جو مین روڈز ہوں گی وہ 120 فٹ چوڑی کر دی جائیں گی، اور گلیوں کے اندر جتنی بھی رکاوٹیں اور ڈنڈے کھڑے کیے جاتے ہیں ان سب کو بھی ہٹا دیا جائے گا. اچھا اسی طریقے سے روایات میں یہ بھی ہے، اس کو ہم ظاہر ہے کہ اپنے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں، کہ سڑکوں پر کھلنے والے جتنے گٹر ہیں یہ ان کو بھی بند کر دیا جائے گا. بہار الانوار کی 52ویں جلد کے اندر پوری ایسی اصلاحات کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے. 5ویں امام امام محمد باقر علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس نے بھی ظہور امام کو پا لیا جو بیمار ہوگا وہ تندرست ہو جائے گا، جو کمزور ہوگا وہ طاقتور ہو جائے گا. ابھی بیمار تندرست کیسے ہوگا یہ آگے چل کے بات آنے والی، کمزور طاقتور ہو جائے گا. اسی طریقے سے امام علوم کو ظاہر کریں گے. روایت میں یہ ہے کہ 27 جو علوم ہیں यानी अब तक उन 27 में से फकत 2% उलूम जो हैं ये लोगों के सामने आए। अभी जो 25 जो रिमेनिंग है ये इमाम ज़माना की आमद के बाद इमाम खुद जाहिर करेंगे उन 25 हिस्से उलूम के, यानी उलूम के जो 27 हिस्से हैं हज़रत आदम से लेकर अब तक दुनिया में फकत 2 हिस्से तकसीम किए गए। 25 हिस्सों को इमाम खुद आकर जाहिर करेंगे। जब 25 को इमाम खुद आकर जाहिर करेंगे तो इतनी ज़्यादा जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर दुनिया एक कमाल पर पहुंच जाएगी, जिस पर अब हम क्लोनिंग के लिहाज से सिर्फ बात करते हैं खाली, वरना जेनेटिक इंजीनियरिंग के ऊपर जितना काम हो रहा है अब ये लगता है कि जो हर तकरीबन जो बीमारी उसके जो कोडिंग और डीकोडिंग का मसला है वो सब के सब पता चल जाएंगे तो दुनिया से बीमारियों का खात्मा हो जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग एक बड़े कमाल के ऊपर पहुँच जाएगी तो बीमारियाँ भी खुद ब खुद ख़त्म हो जाएंगी। इसी तरीके से इमाम के दौर में जितने भी फैसले होंगे अदालतों के वो तमाम के तमाम बिला गवाही होंगे। इमाम अपने इल्म से फैसला करेंगे और बिल्कुल जिस तरीके से हज़रत खिज़र के फैसले हैं, जिस तरीके से मसलन हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के फैसले हैं कि वो भी बग़ैर गवाही के फैसले किया करते थे अपने इल्म नबूवत से, उसके ज़रिए इमाम भी फैसले करेंगे। यानी इमाम फैसले करने के लिए शहादतों का इंतज़ार नहीं करेंगे कि कुछ गवाह लाए जाएं और उसके बाद फिर जो ज़ाहिरी कानून है उनके मुताबिक अमल करते हुए, नहीं, गवाहों का कोई इंतज़ार नहीं होगा। अच्छा, अब एक सवाल ये होता है कि चलें इमाम के पास अगर फैसले आए तो इमाम तो इल्म इमामत से फैसले कर लेंगे, तो पूरी दुनिया के जितने भी मुकदमात हैं क्या उसके सारे फैसले इमाम बनफ्स नफीस किया करेंगे? नहीं, इमाम के और नुमाइंदे भी तो होंगे ना। तो आखिर फिर ये किस तरह से होगा कि उन वो किस तरह से बग़ैर गवाही के फैसले किया करेंगे? तो ये भी है रिवायात के अंदर, बाकायदा गैबत नुमानी में रिवायत है, छठे इमाम से भी ये बात पूछी गई। तो इमाम ने कहा कि देखो कि हर इलाके का एक गवर्नर होगा, जब उसके पास मामलात जाएंगे तो रिवायत में है कि उस इलाके के गवर्नर के पास उसके तमाम मामलात उसके कफे दस्त में होंगे, उसके कफे दस्त में। यानी जब भी कोई मामले को वो मुबहम पाएगा तो वो अपनी हथेली को देख लेगा, उसमें हकीकत लिखी हुई नज़र आ जाएगी। अब इसमें कई एहतमालात उलमा ने नकल की कि आखिर ठीक है कि इमाम अगर बनफ्से नफीस उनकी ज़ाते गिरामी अगर वो फैसले करती तो बात समझ में आती, लेकिन पूरी दुनिया के हर मामले को तो इमाम नहीं निपटाएंगे, हर मुकदमे को। तो कुछ उलमा ने कहा कि अगर जो उनके हर इलाके का जो एक नुमाइंदा इमाम का होगा उसके मामलात उसके कफे दस्त में होंगे, और जब किसी मामले को मुहम पाएगा वो अपनी हथेली को देखेगा और उसके बाद फिर उसको वो अमर वाजे हो जाएगा। अब उलमा ने कहा कई अहतमाल आते हैं। पहला अहतमाल तो ये है कि हो सकता है ये सब बातें बतौर एजाज हों, मौजज़े के तौर पर ऐसी कुव्वत अता कर दी जाए इमाम के उन नुमाइंदगान को। दूसरा उलमा ने कहा हो सकता है, अब हम कयास आरा ही कर सकते हैं, हो सकता है इंटरनेट की तरह से हिदायत का या राबते का वो ज़रिया इमाम से हो, कोई भी जदीद तरीक़ा। और अब तो ये चीज़ ज़्यादा नज़र आने लगी, पहले तो जनाब लैपटॉप होते थे, अब पाम टॉप भी आ गए, यानी जो समझे सिर्फ हथेली के अंदर, या आप ये मैसेजिंग सिस्टम जो आपके पास मोबाइलों के अंदर है, मोबाइल फ़ोन्स के अंदर, उसके अंदर भी यही बात होती कि सेलुलर फ़ोन्स जो हैं उनके तर्ज पर कोई चीज़ हो, या हो सकता है इससे भी लेटेस्ट कोई चीज़ हो जो हमारी समझ में नहीं आ रही। और ये भी रिवायात के अंदर है, बाकायदा मख्तूता इब्ने हम्माद के अंदर रिवायत है कि खुद पैगंबर इस्लाम से मरवी रिवायत है कि ज़हूर इमाम के बाद लोग अपने मुर्दों की ख्वाहिश करेंगे, काश आज हमारे जो मुर्दा हैं वो आज ज़िंदा होते तो ज़माने को देखते कि हम कितनी खुशहाली और कितनी नेमतों के साथ इमाम के साथ ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन उसके बाद उनकी वो दुआ और ख्वाहिश भी कबूल होगी, और फिर रजत का अभी जिसके हम अभी आगे चलकर जिक्र करने वाले हैं। अच्छा, इतना और बता दिया जाए, इसकी भी तफसील उलमा ने बताई कि हज़रत मूसा का जो असा है ना, ये असल में जन्नत का एक दरख्त है, आस उसकी एक शाख है, उसकी शाख है, जन्नत का दरख्त है आस, अलिफ मज़बर आ और सीन। हज़रत जिब्रील ने मदियन में जब हज़रत मूसा पहुंचे थे उस वक्त उनको ये लाकर दिया था। और पांचवें इमाम ये बात बयान फरमाते हैं कि सबसे पहले इस असा को हज़रत आदम को दिया गया था, कि जो हज़रत मूसा का असा था ना, पहले हज़रत आदम के पास था और उसके बाद उनके पास से होता 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 हज़रत मूसा के पास आया, और उसके बाद पैगंबर इस्लाम तक पहुंचा, اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی وساطت سے ہم تک پہنچا ہے اور یہ اب بھی ویسا ہی سرسبز ہے جس طرح سے روزے اول میں اس کو کاٹا گیا تھا۔ اچھا یہ بھی ہے، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں، ایک راوی ہے یعقوب سے کہ کیا تم کو پتا ہے کہ حضرت قائم جب ظہور کریں گے تو ان کے پاس کون سی قمیض وہ پہنے ہوئے ہوں گے؟ اس نے کہا نہیں مولا، مجھے آپ بیان فرمائیے۔ تو چھٹے امام اپنے گھر کے کمرے کے اندر گئے، وہاں سے ایک صندوق لے کر آئے اور صندوق کو چھٹے امام نے کھولا تو اس کے اندر سے پیغمبر اسلام کی قمیض وہ نکالی۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس قمیض کی جو آستین تھی اس کے اوپر خون لگا ہوا تھا، جو جنگ احد میں جب پیغمبر اسلام کے دندان مبارک شہید ہوئے تھے تو وہ خون پیغمبر اسلام کا اس قمیض کے اوپر لگا تھا۔ اس وقت جب ظہور کا وقت ہوگا تو پیغمبر اسلام کی یہ خون آلود قمیض یہ حضرت حجت پہنے ہوئے ہوں گے جو جنگ احد میں جس پر خون لگا تھا۔ راوی کہتا ہے یعقوب کہ میں نے اس قمیض کو لیا، اس کو بوسہ دیا اور اس کے بعد پھر چھٹے امام نے اس قمیض کو بہت اچھے طریقے سے تہہ کیا، صندوق کے اندر رکھا اور پھر دوبارہ اس کو رکھ کر آئے۔ اچھا یہ جو ایک تو پیغمبر اسلام کی ایک یہ اس طرح کی قمیض پہنی ہوگی، ایک پیراہن ہوگا، ایک اور لباس جو کہ حضرت یوسف کا ہوگا، وہ بھی روایت میں اکمال الدین و اتمام النعمہ میں شیخ صدوق نے اس کو نقل کیا ہے اور مفضل ابن عمر اس کے راوی، کہ امام نے پوچھا کہ تم کو پتا ہے کہ جو حضرت یوسف کی قمیض تھی وہ کیسی تھی؟ کہا کہ راوی نے کہا نہیں، تو پھر امام نے اس کی تفصیل بتائی کہ جس وقت حضرت ابراہیم کو آگ کے اندر پھینکا جا رہا تھا اس وقت جبرائیل وہ قمیض لے کر آئے تھے اور حضرت ابراہیم کو وہ قمیض پہنائی تھی اور جس سے وہ محفوظ رہے، اور اس آگ کی جو اس سے پہلے کی حدت تھی اور اس کے بعد جب وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی تھی تو اس کی سردی سے بچانے کے لیے بھی وہ قمیض جو حضرت جبریل نے ان کو پہنائی تھی، جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم محفوظ بھی رہے تھے۔ پھر حضرت ابراہیم کا جب وقت وفات قریب آیا تو انہوں نے اس قمیض کو حضرت اسحاق کے بازوؤں کے اوپر باندھ دیا تھا، ان کے ایک بازو پر باندھ دیا تھا بطور تعویذ، اور انہوں نے پھر حضرت یوسف کے بازو پر حضرت اسحاق کے واقعے کے بعد حضرت یوسف کی جب ولادت ہوئی تھی تو اس وقت حضرت یعقوب نے ولادت کے وقت حضرت یوسف کے بازو پر اس قمیض کو باندھ دیا تھا۔ مفضل نے پوچھا کہ مولا پھر وہ قمیض آج کل کہاں ہے؟ امام نے فرمایا جو اس بات کے اہل ہیں قمیض ان کے پاس محفوظ ہے اور اس کے بعد وہ قائم آل محمد کے پاس وہ قمیض پہنچ جائے گی۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ اور اس بات کا یقین رکھو کہ جو کچھ بھی انبیاء ما سلف کے پاس تھا وہ سب کا سب حضرت حجت کے پاس ہے، اور باقاعدہ جو شیخ حر عاملی انہوں نے اسبات الہدات میں اس بات کو لکھا ہے، جو مولا کائنات کی بھی روایت ہے، کہ جب حضرت خاتم تشریف لائیں گے تو ان کے پاؤں میں حضرت شیس علیہ السلام کی نالین مبارک ہوگی۔ اچھا اب خواتین کے کردار کے حوالے سے بھی پچھلی دفعہ بات ہوئی تھی، اس میں میں نے بہرحال دو الگ الگ روایتیں، ایک روایت میں 50 خواتین کا تذکرہ ہے جو شاید پچھلی دفعہ بھی میں نے بتایا تھا، لیکن ایک اور روایت میں 13 خواتین کا تذکرہ بھی آیا ہے، اور اس بات الہدات میں شیخ حر عاملی نے وہ والی روایت لکھی کہ جس میں کہا گیا کہ جو کام زمانے رسول خدا میں عورتیں انجام دیا کرتی تھیں وہی زمانے حضرت حجت میں بھی انجام دیں گی، اور دیگر جتنی بھی حکومتیں اس وقت ہوں گی جو باطل حکومتیں ہیں۔ پانچویں امام یہ فرماتے ہیں کہ امام کے قیام کے بعد جتنی باطل حکومتیں ہیں یہ ساری کی ساری معدوم ہو جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ باقاعدہ منتخب الاثر میں آیت اللہ صافی گلپائیگانی نے بھی ان روایات کو لکھا ہے۔ اچھا اس کے علاوہ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ جو مختلف وہ ہوں گی کہ 120 فٹ یا 60 ہاتھ کے قریب روڈ چوڑی ہو جائیں گی، بلکہ روایت میں یہاں تک ہے کہ اس قدر روڈز بنانے میں امام کا اہتمام اس قدر ہوگا کہ اس کے راستے میں اگر کوئی مسجد بھی آئی، کیونکہ بہت ساری ایسی جگہوں پر بھی مسجدیں قائم ہو جاتی ہیں جو غصبی زمینیں ہوتی ہیں، کوئی مسجد بھی آئی تو اس کا بھی خیال نہیں کیا جائے گا اور اس مسجد کو بھی گرایا جائے گا، اور خاص طور پر جو پیدل چلنے والوں کے لیے پیڈسٹرین اسٹریٹس جو ہوتی ہیں وہ تعمیر کی جائیں گی۔ और मसाजिद की जितनी भी ज़ाहिरी ज़ेबो ज़ीनत है इसको भी ख़त्म किया जाएगा, सादगी को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाज दिया जाएगा, मसाजिद के जो मीनार हैं ये गिराए जाएंगे। देखिए एक और भी बात बता दूँ, ख़ास तौर पर जब हम एहतिकाफ़ के मसाइल बयान होते हैं तो उस वक्त मस्जिद की हदूद क्या है जिसके अंदर एक मोतकिफ़ को रहना होता है, तो उस वक्त ये वाली बहस आती है कि मसलन मस्जिद की जो छत है वो मस्जिद में आती है या नहीं आती, मस्जिद के जो मीनार हैं उस पर अगर कोई मोतकिफ़ चढ़ जाए तो वो मस्जिद से बाहर तो नहीं चला जाएगा, या मस्जिद की जो मेहराब होती है, देखिए इस्लामिक आर्किटेक्चर में आजकल मीनार मेहराब ये एक बाकायदा हैसियत इख्तियार कर गई और लोग इसको समझते हैं कि शायद ये कोई इस्लामी चीज़ है। ठीक है, कोई हराम तो नहीं है बहरहाल मेहराब बनाना, लेकिन मसाजिद के अंदर जो मेहराब जहाँ पे पेश इमाम खड़ा होता है और उसके आगे एक दरवाज़ा होता है, ये असल में ज़ालिम बादशाहों ने एक सिलसिला कायम किया था जिनको अपने ऊपर दौरान नमाज हमलों का ख़तरा होता था कि कभी ऐसी सूरत हाल पेश आ जाए तो वो दरवाजे से आगे के दरवाजे से निकल कर बाहर चले जाएँ। तो उस वक्त ये चीज़ आती है कि कोई शख्स मस्जिद की मेहराब में चला जाए, मस्जिद के मीनार पर चढ़ जाए या मस्जिद की छत पर चला जाए तो वो मस्जिद में शुमार होगा या नहीं होगा, एक बहस है। तो बहरहाल मसाजिद के जितने मीनार हैं ये गिरा दिए जाएंगे और अकली सतह इतनी ज़्यादा उस ज़माने के लोगों की बुलंद हो जाएगी, क्योंकि इमाम बाकी जो 25 हिस्से हैं उलूम के उनको ज़ाहिर करेंगे कि घर की जो पर्दा नशीन औरतें हैं ये मुकदमात के फैसले किया करेंगी। और ये तमाम उलूम जो हैं ये लोगों के ऊपर तकसीम किए जाएंगे, लोग बिल्कुल कामिलुल ईमान हो जाएंगे और जैसे कि मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि दिल जो हैं वो कीने से खाली भी हो जाएंगे। अल्लामा अमीनी ने बाकायदा इसको लिखा है। उस ज़माने में जब हज़रत हुज्जत की हुकूमत कायम होगी तो रिवायात में ये भी मिलता है कि उस ज़माने में जो ख़रीदो फरोख्त हुआ करेगी वो करेंसी नोट के बजाय दुरूद के ज़रिए होगी। जिस चीज़ की जितनी कीमत होगी उसके मुताबिक उसको दुरूद पढ़ना होगा और वो चीज़ वो ख़रीद सकेगा। बाकायदा इसका एक तजर्बा ईरान इराक जंग के मौके पर किया भी जा चुका है, जब एक सलावाती होटल के नाम से बाकायदा कायम किया गया था कि वो किसी मुजाहिद को जब किसी चीज़ की ज़रूरत पेश आती थी तो वो उतनी दफ़ा चीज़ को पढ़ता था, खाने वगैरह की चीज़, और वो दुरूद पढ़ के वो चीज़ वहाँ से ले जाता था। बाकायदा इसका तजर्बा भी होके देखा जा चुका है। अच्छा, इसी तरीके से हर शख्स की ज़ुबान पर एक जुमला होगा हज़रत हुज्जत के दौर में, इतनी ज़्यादा खुदा की नेमतें देखेंगे कि हर एक की ज़ुबान पर बार बार ये जुमला आएगा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये हर शख्स की ज़ुबान पर जारी हो जाएगा। इसी तरीके से उस ज़माने में जैसे अभी इसका जिक्र हुआ कि बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी, जिसकी जब बीमारियाँ ख़त्म हो जाएंगी तो हर शख्स की उम्र इतनी ज़्यादा तवील हो जाएगी, रिवायात में कि हर शख्स अपनी 1,000 के करीब औलादें देखेगा, 1,000 वो अपनी औलादें देख सकेगा, इतनी ज़्यादा उस ज़माने में, क्योंकि बिल्कुल बीमारियाँ ही ख़त्म हो जाएंगी तो उम्रें बहुत ज़्यादा तवील हो जाएंगी। और जो अकलों की जहाँ तक बात आई है ये भी रिवायात के अंदर है कि हज़रत हुज्जत मोमिनीन के सरों के ऊपर अपने हाथ को रखेंगे जिससे उनकी अकलें कामिल हो जाएंगी और हर शख्स तकरीबन 40 अफराद के बराबर जो है वो ताकत को हासिल करेगा। खुद हज़रत हुज्जत की जो जिस्मानी ताकत है इसके मुतालिक भी रिवायात में बड़ा तस्करा आया कि अभी वो मैं बताता हूँ, लेकिन आम मोमिनीन के हवाले से भी कि उनके दिल बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाएंगे, जो काम उनके मानने वाले शुरू करेंगे जब तक उसको ख़त्म ना कर लेंगे जब तक चैन से नहीं बैठेंगे। हज़रत हुज्जत की भी जो ज़ाहरी ताकत होगी यानी जो आम जिस्मानी ताकत होगी कि बड़े से बड़े दरख्त को एक हाथ से उखाड़ कर फेंक देंगे, पहाड़ों में जाकर अगर हज़रत हुज्जत आवाज़ दें ज़ोर से तो पहाड़ों के पत्थर टूट के गिरने लगेंगे, यानी अगर आप देखें वाकई रिवायात के अंदर। फिर बाकायदा मुफज़ल ने छठे इमाम से एक रिवायत भी नकल की कि जिसमें इमाम ने फरमाया कि आपके हज़रत हुज्जत के दौर में बाकायदा ऐलान हो जाएगा कि जिस शख्स के ज़िम्मे भी अगर कोई कर्ज मौजूद है, जिसके भी ज़िम्मे अगर कोई कर्ज़ है तो वो हमारे पास आए, चाहे उसका राई के दाने के बराबर कर्ज़ा हो या एक पहाड़ के बराबर, उसका कर्ज़ हज़रत हुज्जत खुद अदा करेंगे। अच्छा, इसी तरीके से खुद हज़रत हुज्जत का जो रहन सहन उस दौर के अंदर होगा, रिवायत में ये भी है, 8वें इमाम से रिवायत है, इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से, कि इमाम का जो रहन सहन होगा ये इंतहाई सादा होगा। हज़रत हुज्जत हज़रत कायम का लिबास बहुत ही मामूली और खुरदुरा होगा, اور غذا انتہائی کم قیمت اور سادہ. آیت اللہ صافیہ گلپائیگانی نے منتخب الاثر میں بھی اس کی تفصیل لکھی. اچھا پھر اس کے بعد بہرحال حضرت عجت اس طرح سے زندگی گزاریں گے اور کتنے سال ان کی حکومت رہے گی ہم پچھلی اس میں ایک تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں. بہرحال حضرت عجت جس طریقے سے ایک دنیا میں طریقہ کار ہے, دیگر تمام آئمہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوتے رہے ہیں, امام زمانہ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے. اس سلسلے میں روایات دو طرح کی, کچھ روایت میں تو یہ ہے کہ وہ وفات پائیں گے اور کچھ میں یہ ہے کہ وہ شہید ہوں گے. اچھا البتہ یہ بھی علماء نے لکھا کہ جو شہادت کی روایات ہیں وہ وفات والی روایات سے ذرا برتری رکھتی ہیں, جیسا کہ امام حسن کا بھی جملہ ہے, ہمارے دوسرے امام امام حسن علیہ الصلاۃ والسلام. کہ ہم تمام امام یا تو زہر سے قتل ہوں گے یا پھر شہید ہوں گے. روایات میں یہ ہے کہ جب 70 سال تقریباً پورے ہو جائیں گے تو قبیلہ بنی تمیم کی ایک عورت جس کا نام سعیدہ ہوگا, سواد نہیں سین عین یہ دال ہے سعیدہ, یہ ایک درخت کے اوپر بیٹھی ہوگی بہت بڑا سا پتھر لے کے, اور جب حضرت حجت وہاں سے گزریں گے تو ان کے اوپر اس پتھر کو پھینکے گی, جس کے نتیجے میں حضرت حجت شہید ہو جائیں گے. روایات میں بھی کہ اس عورت کی جو شکل و صورت ہے اس کی ظاہری حالت مردوں کی طرح سے اس کی داڑھی ہوگی اس عورت کی. اچھا لیکن یہ والی جو روایت ہے, اچھا ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک بات بڑی مشہور بھی ہوئی تھی آیت اللہ بہجت کے حوالے سے, کہ جب وہ زارو قطار رو رہے تھے اور لوگوں نے اسے دریافت کیا تھا تو لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے گریے کا وجہ بیان کی کہ وہ عورت پیدا ہو چکی ہے جو حضرت حجت کو شہید کرے گی. اب بہت ساری جب ہم نے اس کا ویسے جب اس کی تحقیق کی اور وہاں کے علماء قوم سے پوچھا تو اکثر نے تو کہا کہ حضرت آیت اللہ بہجت کے حوالے سے جو باتیں ہم کراچی سے سنتے ہیں وہ خود ہم حضرت بہجت کے سامنے رہتے ہوئے بھی ہم کو سنائی نہیں دیتی, کہ بعض اوقات اس قسم کی باتیں کہ ہمیں وہاں سے سننے میں آتی ہیں کہ یہ حضرت آیت اللہ بہجت نے یہ بات کہی یا انہوں نے یہ عمل کیا ہے, ہمیں وہاں سے پتہ چلتا ہے کراچی سے. تو بہرحال بعض اوقات بہت سی چیزیں اس طرح کی مشہور ہو جاتی ہیں جو پھر پھیلتی چلی جاتی ہیں معاشرے کے اندر. اب یہ اب میں اس روایت کا پہلے بتا دیتا ہوں. اب یہ والی بھی جو روایت ہے اس کے متعلق سید محمد صدر جو ہیں انہوں نے تاریخ بعد الظہور ایک کتاب لکھی ہے, اس کے اندر بھی اس بات کو کہا ہے کہ یہ جو روایت ہے اصل میں یہ الزام الناسب میں سید علی حائری یزدی علامہ یزدی نے نقل کی, اور روایت بھی اس طرح سے نقل نہیں کی بلکہ کہا کہ روایت میں اس طرح سے آیا, نہ انہوں نے کوئی حوالہ لکھا ہے اس روایت کا نہ کس کتاب کے اندر ہے, یہ روایت عورت کے ذریعے امام زمانہ کی شہادت کی, تو یہ ناقابل اعتبار یہ روایت ہے. تو لیکن بہرحال جو چیز بالکل یقینی ہے وہ یہ ہے کہ بہرحال کی شہادت کی روایت, اب یہ والی روایت اگرچہ ضعیف ہے لیکن امام کسی بھی اور وجہ سے جس کا تذکرہ معتبر روایت سے ثابت نہیں ہے, ہو سکتا ہے کہ امام شہید ہوں یا وفات پائیں, لیکن علماء نے کہا کہ وفات اور شہادت کی جو روایتیں ہیں اس میں شہادت کی روایت ذرا زیادہ برتری رکھتی ہیں. اچھا پھر اس کے بعد جب امام بہرحال شہید ہو جائیں گے یا وفات پا جائیں گے تو پھر بلکہ ان کی وفات سے بھی کچھ پہلے مظلوم کربلا امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائیں گے. امام کو سوائے امام کے کوئی غسل نہیں دے سکتا, تو روایات میں یہ ہے کہ امام حسین یہ جن کی رجت ہوگی جس کا بھی ہم تذکرہ کرنے والے ہیں, سب سے پہلی رجت امام حسین علیہ السلام کی ہوگی جو تمام شہدائے کربلا اور 70 انبیاء کے ساتھ تشریف لائیں گے دوبارہ. اس وقت حضرت خاتم حضرت حجت حضرت قائم اپنی انگوٹھی اور جو تبرکات انبیاء ہیں یہ امام حسین علیہ الصلاۃ والسلام کے سپرد کر دیں گے. پھر اس کے بعد حضرت حجت کی شہادت واقع ہوگی, امام غسل دیں گے کفن دیں گے اور انہیں دفن کیا جائے گا. اچھا اس میں ایک بات اور بھی روایات میں آئی ہے کہ جو شیطان والا جو واقعہ ہے کہ کیا شیطان کو امام زمانہ قتل کریں گے, छठे इमाम से बात पूछी गई कि शैतान ने तो कुरानी आयत भी है का कयामत तक के लिए मोहलत मांगी थी, यानी उसे वक्त मालूम तक की मोहलत दी गई, तो ये कह दिया जाता है कि हाँ तुझको कयामत तक की मोहलत है, सूरह हिजर में भी जो कि पूरी आयत है। तो इमाम ने फरमाया उसको हजरत कायम के कयाम तक की मोहलत दी गई। इमाम के पास फिर जब उसका आखिरी वक्त करीब आ जाएगा शैतान का, तो इमाम के पास वो जानुओं के बल चलता हुआ मस्जिद कूफा में शैतान आएगा और उस वक्त एक जुमला कहेगा, हाय मेरी बदनसीबी, ये रिवायत का जुमला है। और फिर उसके बाद इमाम उसके पेशानी के बालों से उसको पकड़कर उसकी गर्दन को काट देंगे। और यही वो वक्त मालूम है जिसको शैतान को जिस वक्त तक की मोहलत दी गई। तफसीर अय्याशी में भी पूरी ये रिवायत है और तफसीर अल-मीज़ान में अल्लामा मोहम्मद हुसैन तबातबाई ने भी इस रिवायत को लिखा है। अच्छा, कुछ उलमा ने कहा कि जो शैतान के कत्ल वाली जो रिवायत है इससे मुराद फिज़िकली शैतान का कत्ल करना मुराद नहीं, कुछ उलमा ने ये बात भी कही, बल्कि इसके मायने ये हैं कि इबलीसी मकरो फरेब का जो निज़ाम है दुनिया से ये ख़त्म हो जाएगा, इबलीसी नज़रियात बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे और अकल और ईमान की हकूमत इस दुनिया के ऊपर कायम हो जाएगी। अच्छा, अब क्योंकि हम उस मौके पर आ गए कि हज़रत हुज्जत इस दुनिया से रुखसत होंगे और उसके बाद फिर हमारे तीसरे इमाम जिनकी रजत सबसे पहले होगी 70 अंबिया और शहदाए करबला के साथ तशरीफ लाएंगे। कुछ लोगों ने आकर, बाकायदा मुफज्जल ने आकर इमाम से कहा, शिकायत की कि कुछ लोग रजत के कायल नहीं, उनके मुतालिक आप इमाम क्या फरमाते हैं? अच्छा, एक बात और बता दूं, अब ये थोड़े से फिकही बहस है कि जो रजत का नज़रिया है ये एक ज़माना था कि जब ये नज़रिया ज़रूरियात मज़हब शिया में से हुआ करता था। ज़रूरियात मज़हब शिया एक बाकायदा टर्म है, यानी जिसको का अगर इनकार कर दिया जाए तो वो शियत से खारिज हो जाता था। लेकिन मौजूदा उलमा का जो नज़रिया है वो ये है कि रजत के ऊपर एतक़ाद रखना ये ज़रूरियात मज़हब शिया में से नहीं, यानी अगर किसी शख्स को इसके मुतालिक मालूमात ही नहीं है या अगर वो इस तरह की रिवायत सुनता भी, जिसमें अभी आखिर हम आगे चलकर तस्करा करेंगे भी उसका, तो बहरहाल उसकी शियत पे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जब रजत का मौका आएगा तो खुद ही देखा जाएगा। और अभी ऐसा कोई नहीं है कि अगर किसी को इसका एतक़ाद ना हो या अगर आप किसी को ये बात बयान करें उसे यकीन ना आए तो गोया वो शियत से खारिज समझा जाए, ये वाला ऐसा नहीं। और एक बस एक जुमला कहूँगा, अब जिसको समझ आए आए, नहीं आए तो नहीं, वो ये है कि ज़रूरियात मज़हब शिया भी बाज़ औक़ात ये जो नज़रिया है कि कौन सी चीज़ ज़रूरियात मज़हब में है और कौन सी चीज़ ज़रूरियात मज़हब में नहीं, ये भी वक्त गुजरने के साथ कुछ मसाइल में तब्दीली मुमकिन है। एक ज़माने में एक चीज़ ज़रूरियात मज़हब शिया में से हो और कुछ अर्सा गुजरने के बाद वो ज़रूरियात में से ना रहे, एक बहरहाल एक फ़िक़ी मसला है जिसको एक कसूली मसला है, इस पर फ़िलहाल इस पर बात करने की तो ज़रूरत नहीं है। तो मुफज़्ज़ल ने आगे कहा कि मौला कुछ ऐसे अफराद हैं कि जो रजत के ऊपर यकीन नहीं रखते, तो इमाम ने कहा कि क्या उन लोगों ने हमारे जद्द अमजद की वो और अहले बैत से मरवी वो अहादीस नहीं सुनी जिसमें बार बार आइमा अथार की वापसी की खबर दी गई? क्या उन्होंने कुरान की वो आयत नहीं सुनी, वला नुज़िक़न्नहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर, जो बाकायदा इमाम ने फिर आयत पढ़ी कि हम उन्हें बड़े अजाब से पहले छोटे अजाब का मज़ा चखाएंगे। तो कहा कि बड़ा अजाब तो कयामत का अजाब होगा और छोटा अजाब इस दुनिया में उन जालिमों के लिए रजत के ज़माने का अजाब, मिनल अजाबिल अदना दूनल अजाबिल अकबर, हम छोटे अजाब से पहले उनको, बड़े अजाब से पहले उन्हें छोटे अजाब का मज़ा चखाएंगे। तो बड़े अजाब से मुराद कयामत का अजाब है और छोटे अजाब से मुराद रजत का अजाब है। अच्छा, इसी तरीके से इमाम ने एक और भी दलील फरमाई, कहा कि ये जो जब मौला से पूछा गया कि मौला ये जो सूरह तकासुर के अंदर है कल्ला सौफ़ा तअलमून थुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून, तो इसके मुतालिक उन्हें मालूम चल जाएगा और उन्हें अनकरीब मालूम चल जाएगा, इसके मुतालिक आप क्या कहते हैं? तो इमाम ने फरमाया कि इससे भी मुराद कि एक तो अनकरीब उनको रजत में मालूम चल जाएगा, बिहारुल अनवार की जो तीसरी जिल्द है उसके अंदर ये रिवायत है, और दूसरा उनको कयामत में मालूम चल जाएगा, कल्ला सौफ़ा तअलमून उनको पता चल जाएगा, सुम्मा कल्ला सौफ़ा तअलमून और उनको उनको अनकरीब पता चल जाएगा। तो ये दो दफा इसकी तकरार क्यों आई? तो इमाम ने कहा कि एक दफा उनको रजत में पता चलेगा और एक दफा कयामत में। सैयद मुर्तजा, शेख मुफीद, कितने ही हमारे उलमा ऐसे गुजरे हैं कि जिन्होंने बाकायदा रजत के मौजू पर तवातुर का दावा किया और कहा कि इस पर इजमा है और कितनी ज़्यादा रिवायात से इसकी ताकीद भी आई है इस नज़रिए की कि बाकायदा ज़ियारत जामिया, जो कि तमाम आइम्मा की एक ही ज़ियारत पढ़ी जाती है, यानी अगर कोई ज़ियारत जामिया पढ़ ले तो सब इमामों की ज़ियारत गोया उसने पढ़ ली, और जिसको अल्लामा मजलिसी ने कहा कि सबसे सही तरीन ज़ियारत है ज़ियारत जामिया, उसके अंदर भी है मुसद्दिकुन बिरजअतिकुम, ऐ मौला मैं आपकी रजत की तस्दीक करता हूँ, ऐ आइम्मा मासूमीन मैं आपकी रजत की तस्दीक करता हूँ। इसी तरीके से जो ज़ियारत वारसा में जो छठे इमाम से जो चीज़ बयान हुई है, इन्नी बेकुम मोमिनुन व बेयाबेकुम मोकिनुन, मैं आप पर ईमान रखता हूँ और आपकी वापसी पर भी ईमान रखता हूँ, ये भी इस बात की निशानदेही, कभी आप तर्जुमे के साथ पढ़ें ज़ियारत वारसा, अन्नी बेकुम मोमिनुन व बेयाबेकुम मोकिनुन, मैं आप पर ईमान रखता हूँ और आपकी वापसी के ऊपर भी ईमान रखता हूँ, इससे भी है। इसी तरीके से ज़ियारत आले यासीन, जिसकी कहा जाता है कि दीदार इमाम के लिए जो सबसे मुजर्रब तरीन ज़ियारत है वो ज़ियारत आले यासीन, अगर कोई ज़ियारत करना चाहे इमाम की अपनी आंखों से तो ज़ियारत आले यासीन पढ़े, उसके अंदर भी है अन्ना रजअतकुम हक्कुन, मैं गवाही देता हूँ कि आपकी रजत और वापसी बिल्कुल बरहक है। अच्छा, अब ज़रूरी नहीं है कि हमें हर रिवायत को, जैसे कि हम लोगों का एक मजालिस सुनते सुनते और मनाजरे की गुफ्तगू सुनते सुनते एक ट्रेंड हो गया है कि हमें हर नज़रिए का इस बात मुखालिफ फ़िरक़े की किताबों से दरकार होता है, अगरचे उनके हमारे पास रिवायत है कि हम उनकी किताबों से भी चीज़ कैसे साबित करेंगे, लेकिन बहरहाल अब ये इस तरह से दूसरों की किताबों में कोई चीज़ मिले तो ही आप अपने नज़रिए को कबूल करें, बाकायदा जुमला है ख़ुद इमाम ज़माना का, हम मारिफ की जो जस्तजू है, ये जो आप कोई चीज़ हासिल करना चाहते हैं मारिफ की जस्तजू, हम अहले बैत के सिवा किसी और से हासिल करना ऐसा ही है जैसे हमारा इनकार करना, यानी हम ये नहीं कि हमें फला फला की किताबों से अगर रजत के मुतालिक हमें दलाइल मिले तो हम उसको मानेंगे वरना हम उसको नहीं मानेंगे। तो बहरहाल अच्छा, अब एक और भी चीज़ है कि एक अमल है जो कि सैयद अली इब्ने ताउस ने मिसबाहुज़ ज़ाहिर में लिखा है कि छठे इमाम से भी रिवायत है कि जो शख्स भी 40 सुबह दुआ अहद को पढ़े वो हज़रत कायम के अंसारो ऐवान में से करार पाएगा, जो भी 40 सुबह दुआ अहद को पढ़े, और अगर इस शख्स ज़हूर से पहले फौत हो गया तो ज़हूर के बाद दोबारा ज़िंदा करके इसको हज़रत हुज्जत की खिदमत में भेजा जाएगा, और ये भी जो दुआ अहद है इसके हर हर्फ के बदले 1000 नेकियाँ लिखी जाती हैं और हर हर्फ के बदले 1000 गुना नामा अमाल से महफ किए जाते हैं, बाकायदा दुआ अहद ये आप किताबों के अंदर आपको मिल जाएगी। अच्छा, उस ज़माने के लिहाज से फिर एक और बात और भी है कि कूफा और नजफ, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा था कि रिवायात में है कि हज़रत हुज्जत की जो ज़हूर की अलामत है उसमें से कूफा और नजफ मिल जाएंगी, यानी अब ये पेशगोई बिल्कुल अब नज़र आ रही है कि आखिरी जमात तक तकरीबन जो दरमियानी आबादी बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से दोनों शहर मिल के रह गए। अच्छा, ज़माने रजत के अंदर जो ये भी रिवायात के अंदर आया है कि पैगंबर इस्लाम की भी हुकूमत दोबारा होगी, तकरीबन 50,000 साल पैगंबर इस्लाम की हुकूमत होगी और 44,000 साल मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की हुकूमत होगी। मौलाए कायनात और पैगंबर इस्लाम की मुलाकात नजफ में होगी और एक बाकायदा एक मस्जिद भी तामीर होगी, पहले इमाम के लिहाज से भी एक है और एक ज़माने रसूल खुदा के लिहाज से भी एक रिवायत आई कि उसमें 1200 दरवाज़े होंगे, जबकि इमाम ज़माना वाली जो मस्जिद है उसके मुतालिक 1000 दरवाज़ों की जो सैयद इब्ने ताउस ने रिवायत नकल की है। एक रिवायत में कि पूरी दुनिया की जो उम्र है ये 1,00,000 साल है, एक रिवायत है, इसमें 20,000 साल तो आम लोग हुकूमत करेंगे और 80,000 साल आले मोहम्मद की हुकूमत होगी, 20,000 साल आम लोगों की हुकूमत होगी और 80,000 साल इस दुनिया में आले मोहम्मद की हुकूमत होगी। अच्छा, रिवायात में मिलता है कि अमीरुल मोमिनीन की रजत दो दफ़ा होगी, एक दफ़ा तो पैगंबर इस्लाम के साथ तशरीफ़ लाएंगे और एक में है कि खुद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ तशरीफ लाएंगे। अच्छा, रजत के सिलसिले में भी वो जैसे मैंने आपको एक गुफ्तगू इससे पहले हुई थी उसमें कहा था कि जमात भी उस सानी के आखिर में जो बारिशें होंगी, एक तो जहूर से पहले की भी बारिशें हैं और एक रजत से पहले भी बारिशें होंगी, इतनी शदीद बारिशें होंगी, इतनी शदीद 10 रोज तक तो इतनी ज़बरदस्त बारिश होगी कि आज तक लोगों ने ऐसी बारिश नहीं देखी होगी। और ये बारिश जब मोमिनीन के कबूर के ऊपर पड़ेगी तो उससे जिस्म नमू पाएंगे और लोग मट्टी को झाड़ते हुए अपनी कब्रों से बाहर आ जाएंगे, इस हालत में उठेंगे कि मट्टी सरों से गिर रही होगी। जमाने रजत में जो शख्स भी दोबारा उठेगा वो अपनी साबिका उम्र से दुगनी उम्र पाएगा जितनी उससे पहले उसने हासिल की थी। अच्छा, जो उस जमाने में रिवायत में ये भी है कि जो नासिबी होंगे, जो दुश्मनान अहले बैत चंद एक रह जाएंगे, उनके मुतालिक उस आयत की तफसीर में जो हमने इससे पहले बरज़ख़ के अज़ाब में जिक्र की थी, फ़इन्ना लहू मईशतन ज़ौनका, कि उनका जीना बड़ा तंगी का जीना होगा। एक रिवायत में एक तो यह कि कब्र किससे मुराद है, एक और रिवायत भी है छठे इमाम की, किससे मुराद नासिबी हैं। ज़माना रजत में इनकी ग़िज़ा और ख़ुराक बनी आदम का फुजला हुआ करेगी जो नासिबी। तो बहरहाल, अच्छा इसी लिहाज से अक्सर उलमा ने एक चीज़ और भी इसमें लिखी है कि बहुत सारे ज़ालिमीन ऐसे होंगे जिनकी रजत कई दफ़ा होगी और वो हर दफ़ा अपने किए की सज़ा पाएंगे, यानी एक दफ़ा की दी गई सज़ा ज़माने रजत में उनके लिए काफ़ी नहीं होगी। रजत में एक बात याद रहे कि ज़माने रजत में तौबा का दरवाज़ा बिल्कुल बंद है, किसी की कोई तौबा कबूल नहीं होगी ज़माने रजत में। छठे इमाम की एक और रिवायत भी है कि रजत में दो तरह के लोग उठाए जाएंगे, या तो खालिस मोमिन होंगे या खालिस काफिर होंगे, दरमियानी जो मोमिनीन होंगे उनको नहीं उठाया जाएगा सिवाय इसके कि वो इस बात की ख्वाहिश रखें। बाकायदा तफसीर नूरुस सकलैन के अंदर पूरी तफसील है इसकी। अच्छा, अब एक चीज़ ये सवाल पैदा होता है कि जो रजत होगी ये इजबारी होगी या इख्तियारी होगी। तो देखिए, बहरहाल ज़ालिमीन कोई अपने शौक से सज़ा पाने के लिए तो उठेंगे नहीं, मोमिनीन के लिए इख्तियारी होगी, बाकायदा फरिश्ते जाकर उनसे पूछेंगे कि अगर तुम्हारे इमाम ने ज़हूर किया है, अगर तुम उनकी नुसरत के लिए जाना चाहते हो तो चले जाओ। कौन मोमिन बदनसीब ऐसा होगा जो उस वक्त इनकार करेगा। अलबत्ता ज़ालिमीन के लिए तो कोई शौक से नहीं आएंगे, उनकी इजबारी होगी। अच्छा, फिर उसके बाद मुफज़ल की एक छठे इमाम से भी रिवायत है कि जो भी पूछा गया कि जो भी इश्तियाक रखेगा हज़रत हुज्जत की ज़्यारत का, उसकी आखिर वो हसरत पूरी कैसे होगी। तो बहरहाल इसकी दुआ करना, बहरहाल रिवायत में तो बहुत सारे इस तरह के, हम मेरे ख्याल आपकी खिदमत में इससे पहले बयान भी कर चुके हैं कि वो कौन कौन से हम तरीक़े इख्तियार करें कि जिससे हम इस बात की ख्वाहिश रखते हों कि हम ज़माने रजत में उठाए जाएँ। जो आमाल हैं तो खैर मैंने इससे पहले बयान भी कर चुका। रजत में कौन कौन उठेगा ये भी मेरे ख्याल है पिछली दफ़ा के किसी एक लेक्चर में मैंने आपकी खिदमत में बयान किया था। एक तो हज़रत खजरी होंगे जिनकी उम्र इस वक्त मैंने बताई थी कि तकरीबन 6000 साल, और उनको जो इतनी तवील तरीन ज़िंदगी दी गई है हज़रत खजर को, उनके मुतालिक भी रिवायत में इस ये है कि हज़रत खजर को इतनी तवील ज़िंदगी का दिया जाना ये इस बात के लिए है, तकवियत पहुँचाने के लिए कि वो हज़रत हुज्जत की तवील तरीन ज़िंदगी के गवाह करार पाएँ और लोगों के सामने भी एक एग्जाम्पल रहे कि जिनको तुम बिल्कुल मानते हो 100% कि एक आम शख्स भी थे, ये चले या चले नबी भी थे, तब भी बतौर एजाज़ अगर परवरदिगार चाहे तो इतनी तवील उम्र भी कर सकता है। हज़रत खिज़र की तो 6000 साल, हज़रत हुज्जत की तो 1000 साल से कुछ ज़्यादा है उम्र। तो बहरहाल, अच्छा इसी तरीके से एक रिवायत ये भी है जो कि हमारे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से है, कि मैं वो पहला शख्स हूँगा कि जो जिसके लिए ज़मीन शिगाफ्ता होगी। अच्छा, इसके अलावा सलमान फ़ारसी भी उठाए जाएंगे ज़माने रजत में, इनका भी रिवायत में तस्कर आया है, मेघदाद का भी तस्कर आया है, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी का भी तस्कर आया है, हज़रत अबू दजाना अंसारी का भी तस्कर आया है। देखिए, हज़रत अबू दजाना इनके मुतालिक मिलता है कि जंगे उहद में सब लोग छोड़कर चले गए थे पैगम्बर इस्लाम को सिवाय मौलाए कायनात के और अबू दजाना के। पैगंबर ने कहा था अबू दजाना बैत मैंने तुम्हारी गर्दन से उठा ली, तुम भी अगर जाना चाहो तो चले जाओ। और जहां तक रही बात अली की, तो वो तो मुझसे और मैं उनसे हूं, लेकिन मैं तुम पर से अपनी बैत को उठाता हूं। अबू दजाना ने कहा, या रसूल अल्लाह, ऐसा हरगिज नहीं होगा। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बैत को छोड़कर और अपनी जौजा और अपनी औलाद के पास चला जाऊं, जो खुद एक दिन मरने वाले? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बैत को गर्दन से उतार कर अपने घर की तरफ चला जाऊं, जो एक दिन वीरान होने वाला है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपकी बैत को छोड़कर अपने उस मालो दौलत की तरफ चला जाऊं, जो खुद एक दिन फना होने वाला है? या मैं आपकी बैत छोड़कर उस मौत की तरफ चला जाऊं, जो खुद एक दिन मुझ तक पहुंचकर रहेगी? उसके बाद बहरहाल लड़े अबू दजाना और उसके बाद शहीद हुए जख्मों से चूर होकर। तफसीर नज़र सकलैन में इसका पूरा वाकया है। तो हज़रत अबू दजाना अंसारी ये ज़माने रजत के अंदर उठाए जाएंगे। इसी तरीके से हज़रत मुफज़ल इबन उमर, छठे इमाम के जो सहाबी, खुद छठे इमाम कहते हैं, मुफज़ल तुम हज़रत कायम के दाएं तरफ खड़े होंगे और तुम लोगों को उस तरह से अमरों नहीं करोगे, और आज से ज़्यादा उस ज़माने में लोग तुमसे फरमान को हासिल किया करेंगे। मुफज़ल इब्न उमर को इमाम फरमा रहे हैं कि तुम दाएं तरफ खड़े होंगे और तुम उस ज़माने में भी अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर किया करोगे, और उस दिन तुम से आज से ज़्यादा लोग फरमान हासिल किया करेंगे। इसी तरीके से ज़माने रजत में उठाए जाने वाले अफराद में मोमिन आले फिरौन भी होगा। मोमिन आले फिरौन, जिनका कुरान के अंदर भी तस्कर आया है। अच्छा, ये भी हज़रत इमाम मेहदी के असाब में से करार पाएंगे। इसके अलावा हज़रत मूसा के जो वसी थे, यूशा बिन नून, ये भी ज़माने रजत में उठाए जाएंगे। रिवायत में मिलता है कि इनकी भी जो ज़िंदगी है हज़रत यूशा की, ये जो इनके वसी थे हज़रत मूसा के, इनकी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा हज़रत अमीरुल मोमिनीन की ज़िंदगी से मुमासिलत रखती। छठे इमाम फरमाते हैं कि इन्होंने हज़रत मूसा के बाद बहुत तकलीफ़ें उठाईं, और बिल्कुल पैगंबर इस्लाम की तरह से ही हज़रत मूसा की जो जौजा थी, इनको कुछ मुनाफिकीन ने इस बात के लिए तैयार किया कि वो हज़रत यूशा के साथ जंग करें, और जंग हुई। बहरहाल हज़रत यूशा को इसमें फतह नसीब हुई, और हज़रत शोएब की जो बेटी थी, ये असल में हज़रत मूसा की जौजा थी, ये जब गिरफ़्तार होकर लाई तो हज़रत यूशा ने इनको माफ़ कर दिया। अलबत्ता एक बात और भी कही कि मैं जब क़यामत के दिन हज़रत मूसा के पास जाऊंगा तो आपकी शिकायत करूंगा, क्या आप के वफ़ात के बाद आपकी जौजा ने किस तरह से मुझसे जंग की? तो जौजा हज़रत मूसा ने कहा, वाय हो मुझ पर, खुदा की कसम, अगर मुझे जन्नत में जाने की इजाज़त मिल गई तो मैं उसमें दाखिले से शर्म करूंगी कि मूसा वहाँ पर मौजूद होंगे, मैंने कैसे मुँह दिखाऊँगी कि मैंने उनकी हुरमत को पामाल किया और पर्दे से बाहर निकल आई और उनके वसी से मैंने जंग की। यानी बिल्कुल वही मौला अमीरुल मोमिनीन के वाक़यात से बहुत मुमासिलत इनमें रखी है। अलबत्ता उलमा ने कहा, एक फ़र्क है कि मौला के ज़माने में जो खातून थीं, वो आखिरी वक्त तक यही तसव्वुर करती रहीं कि उन्होंने कुरान के हुक्म व करना फ़ी बियूते कुन्ना के कुरानी हुक्म की मुखालफत नहीं की। ए नबी की बीवियों, घरों में रहो। उन्होंने तो कहा, मैंने पर्दे को पामाल किया और घर से बाहर निकल आए, उनके वसी से जंग की, लेकिन वो खातून बहरहाल आखिर वक्त तक यही कहती रहीं कि मैंने कोई गलती नहीं की। अच्छा, इसी तरीके से असहाबे कहफ के मुतालिक है, यूशा बिन नून भी आएंगे और असहाबे कहफ ये भी आएंगे। असहाबे कहफ के तो मुतालिक है कि सबसे पहले दिन जब खाने काबा में लोग जमा होंगे, सबसे पहले असहाबे कहफ पहुँचेंगे पहले ही दिन, और ये उन 313 अफराद के अंदर शामिल होंगे। एक बात और भी कहे बगैर ना रह जाए इसमें, कि अक्सर लोगों के एक ज़माना था जब हम ये इस पर गुफ्तगू कर रहे थे बरज़ख के हालात पर, और जिसमें मिसाली पर गुफ्तगू हुई थी, एक नज़रिया ये है, लेकिन उलमा ने इसका रद्द कर दिया, कहा कि जो रजत है ये जिसमें असली पर वाक़ होगी, जिसमें मिसाली पर वाक़ नहीं होगी, इसमें जिसमें मिसाली नहीं होगा, जिसमें असली उठाया जाएगा रजत के अंदर। और फिर अब इतना वक्त फिर नहीं रहा, तो बहरहाल इसमें बस एक आखिरी चीज़ और बयान कर दें हम, कि जितने भी लोग जिन्होंने आले मोहम्मद को सताया होगा, ये भी ज़माने रजत के अंदर उठाए जाएंगे और इनसे भी इंतकाम लिया जाएगा। और तफसीर नूरुस्सकलैन में उस औरत का भी तस्करा आया है जो शहज़ादी कौनैन को बहुत ज़्यादा अजियत पहुँचाया करती थी, उनका भी है कि उनको भी उठाया जाएगा और उन पर अजाब होगा। इसी तरीके से वो तमाम अफराद भी जिन्होंने मारिया क़िब्तिया पर जो तोहमत लगाई थी पैगम्बर इस्लाम की जौजा पर, उनको भी उठाया जाएगा। और कुछ दो ज़ालिमों का भी तस्करा आया है, उनको भी उठाया जाएगा और उनको भी सज़ाएं दी जाएंगी, जिसकी पूरी तफसील आई है। रजत के मुतालिक तकरीबन 200 अहादीस हैं, आइमा मासूमीन से मरवी। 40 उलमा ने रजत की अहादीस को नकल किया है और 50 से जायद ऐसी किताबें हैं मोतबर के जिसके अंदर रजत के मुतालिक रिवायत जिक्र हुई। अच्छा देखिए, इमाम ज़माना के मुतालिक जो ये बात कही जाती है कि इमाम की गैबत पर इमाम की अपनी विलादत से पहले किताबें लिखी जा चुकी। अली इब्न हसन नाम के कालिम, उन्होंने किताबें लिखी थी। इसके अलावा बतायनी है, उनकी किताबें हैं। अबुल फजल नाशरी की किताबें हैं। खुद यानी इमाम की पैदाइश से पहले इमाम की गैबत के मौजू पर किताबें लिखी जा चुकी। लोग बार बार आइमा मासूमीन के पास आते थे कि मौला ये बताइए कि आखिर हमको ये आसाइश और ये फ़र्ज और ये जुल्म से निजात कब मिलेगी। तो फिर उसके बाद इमाम तमाम वो कैफियत और अलामत बताया करते थे कि हमारा आने वाला एक आएगा और उस ज़माने में यही अलामत होंगी और उसके बाद उसका ज़हूर होगा और उसके बाद आसानी नसीब होगी। तो किताबें भी लिखी जा चुकी हैं। अच्छा, इस लिहाज से बस अब हम इस मौजू को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि ज़माने रजत के अंदर तमाम आइमा मासूमीन की दोबारा वापसी होगी रिवायात के अंदर है, और उसके बाद ये एक सिलसिला चलेगा, और जब दुनिया की वो मुद्दत पूरी हो जाएगी तो उसके बाद क़यामत के आसार, उसके ऊपर हमारी अगली दफ़ा गुफ्तगू शुरू होगी जो हमारी 25वीं नशिस्त होगी। इस मौजू पर बहुत सारे सवाल आप लोगों के आज आ गए हैं। इससे पहले के सवाल के जवाब इंतज़ामिया को दे दिए गए हैं, आप उनसे तहरीरी हासिल कर लीजिएगा जवाब, और अभी जो आपके सवाल हैं इंशाल्लाह इसको अगली दफ़ा देखेंगे। नहीं, वो कहते हैं कि जिसमें मिसाली नहीं होगा, जिसमें असली के ऊपर ही रजत होगी। कुछ का नज़र ये था कि जिसमें मिसाली के ऊपर रजत वाक़ होगी, जबकि ये नहीं है। उलमा ने कहा कि जिसमें असली ही होगा। दाबतुल अर्ज का वो तो इससे पहले का तस्करा है, रजत से पहले का जी अलाम, वो हम इशरातुस्सा एक क़यामत की कुछ अलामत हैं उस वक्त उसका जिक्र करेंगे। बाकायदा अगली दफ़ा हमारी इसी मौजू पर गुफ्तगू, उसका इंतज़ार कर लीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।
الله جل جلاله يا مولا الله جل جلاله الله جل جلاله الله جل يا صاحب السماء الله